मोती कुंड कहलाता है या मुक्ता कुंड। हम लोग गए थे आशीष्वर कुंड में, वो कृष्ण ने अपनी मैया से, मैया के चरण छू रहे हैं, हम मैया को मना रहे, जो मैया हाँ मैं बच्चा नहीं रह गया, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मोटा वोटा हो गया हूँ, मेरी शादी कर दे। सगाई बरसाने से सचमुच में आ गई, बरसाने से सगाई आई, तो सगाई में लड़के के लिए कपड़ा लत्ता और अंगूठी, सोने का हार और सब चीजें आती है, आभूषण आता है। तो ब्रह्मानु महाराज जी की 11 लाख गायें थी, तो उन्होंने मुक्ता मणियों की माला कृष्ण के लिए, अपने भावी जमाई के लिए, बात पक्की के लिए दिया, कपड़े लत्ते दिए, किंतु स्पेशल रूप में मणियों की मुक्ता दी माला। जब यहाँ आया नंदगांव में, तो जितने वहाँ के पूर्वासी थे, बूढ़ी बूढ़िया और बड़े बड़े लोग थे, देखने के लिए उत्कंठित थे कि सहजे से सगाई पक्की करने के लिए कौन कौन सी चीज आई है। बक्से में भरा देखा, सुंदर सुंदर मोतियों की माला, कपड़े लत्ते अच्छे अच्छे, देख करके नंद बाबा के और यशोदा जी के होश उड़ गए। किस लिए होश उड़ गए? देख करके उनको आनंद होना चाहिए, आज इसके बदले में ऐसे ही कोई चीज हमको लड़की के लिए भी तो भेजना पड़ेगा, इसलिए हमारे पास, और यदि इसको लौटा देते हैं तो कहेंगे ये गरीब आदमी है, ये हमारी दी हुई चीज को लौटाया, इसलिए अब क्या किया जाए। अब दूसरे तीसरे दिन में सगाई जाने वाली है उल्टी लड़की के पास, नंद बाबा बड़े चिंतित हो गए। यशोदा माँ जी से बातचीत करके ये ठीक कर रहे हैं, जैसे ये तो मणियों की जो माला आई है मुक्ता की, हम लोगों के पास में तो ऐसा नहीं है, अब क्या किया जाए। जब उनको इस प्रकार से कृष्ण ने चिंतित देखा, तो कृष्ण झट मैया के पास में, मैया वहाँ से सगाई में क्या चीज आई है? अरे कुछ नहीं आई है, आई क्या है? तो उन्होंने बहुत जिद किया, तो उन्होंने वो सब चीजें दिखलाई, तब तो उनको देख करके उनको बड़ी पसंद आ गई, वो माँ मैया ये हमको दे दे अभी, वो पहना दे अभी। मैया ने बहुत समझाया, वो मान नहीं रहे, मैया किसी काम के लिए इधर उधर गई, किंतु उन्होंने दिया नहीं, नंद बाबा से कहा, नंद बाबा भी नहीं दिया। इतनी बेशकीमती मणियां, ये बहुत दुर्लभ है संसार में, तो ये कैसे दी जाए, ये खेलेगा, ये इसका मूल्य नहीं समझेगा, इसलिए उनको नहीं दिया। बार बार जाने पर उनको डांट टपट करके, समझा बुझा करके लौटा दे दिए, किंतु उनको तो ऐसी लत है, अभ्यास है, जो जिस चीज को देखेंगे और इच्छा होगी जरूर लेंगे। अब इसके बाद में वो जब इधर उधर चली गई और नंद बाबा से परामर्श करने लगी, ये कैसे इसको क्या इसके बदले में सगाई के लिए भेजी जाए, इतने में कृष्ण वहाँ आए और किसी प्रकार से चोरी करके एक मणि की माला उसमें से चुरा ली, और चुरा करके यहाँ चले आए। पंडा जी कह रहे हैं कि दाऊ भैया भी था, दाऊ भैया को ले लिया। दाऊ भैया को किस ले लिया? हल चलाने में बहुत तेज है, उसके पास में हल है, इसलिए हल से चलाया, यहाँ कर्षण किया, बलदेव प्रभु से जुतवा लिया, और लेकर के वो जो मणि थी उसमें दे दिए, और इस कुंड को खोदा उसको पानी सिंचन करने के लिए, इस कुंड से पानी को वो अपने हाथों से सींचते, और दो एक दिन में ही उसमें से अंकुर निकले, धीरे धीरे वो लता बढ़ गई, सुंदर सुंदर उसमें फूल आए, फूल से फल की कुड़ियां निकली, और कुड़ियों में वो मोती धीरे धीरे पुष्ट हो गया। पुष्ट होने के बाद में जब एकदम सूख गया, तो उसमें से उसको निकाल करके मुक्ता को उसमें से बाहर कर दिया। बाहर कर लिया, पिताजी और मैया को दे दिया। जब तुम लोग इसके लिए चिंतित हो तो यही इसी को भेज दो। बड़े नंद बाबा प्रसन्न हुए, उन्होंने दो एक माला भेजी, तीनों ने गाड़ी छकड़े पर
सिर में बांध दिया, खुरों में बांध दिया
और वहाँ पर भेजा। अब वहाँ पर ललिता इत्यादि शक्तियों को, सुमति जी को ये पता चला, जैसे हमारे पिताजी ने तो थोड़ा सा ही भेजा था और ये गाड़ी में भर कर छकड़े में भर करके भेज रहा है। तो वो यहाँ पर उसकी रखवाली बाकायदा करते थे, तो यहाँ पर वो सब सखियाँ आईं, ललिता विशाखा इत्यादि आईं और कृष्ण से मांगने लगी कि हमें इसमें से थोड़ी सी मुक्ताएं हमको दो। कृष्ण, मैं नहीं देता, तुम लोग क्या करेगी? तो हम अपनी सखी को सजाएंगे। अब तुम्हें याद नहीं है, जब तुम्हारे पास में कुछ मड़ियां थी, मैं मांगने गया तो तुमने पूछा कि किस लिए? तो हमने कहा कि अपने बैल को और गाय को और बछड़े के खूर में बांधना है, और तुम लोग दिया नहीं सिंह में, हम तुम्हें नहीं दे सकते। अंत में बहुत निहोड़ा करने लगे, जब नहीं दिया तो वो सब सखियां बोले, तब क्या हम लोग मोती की खेती नहीं कर सकती? उन्होंने अपने आप उस खेत को एक पास में, वो वहाँ पर बरसाने में एक मुक्ता मुक्ता कुंड है, वहाँ पर खेत को जोता और खेत को जोतने के बाद में उन मड़ियों को बीज के रूप में दिया और अपने अपने घरों से घड़ों घड़ों दूध लेकर के उसको सींचने लगे। कुछ दूर में उसमें अंकुर क्या निकलेगा, उसमें अंकुर माने वहाँ पर जंगली जो घास होती है कांटे वाली, कांटेदार उसमें से निकली। तो पहले उनको देख करके बड़ी प्रसन्न हुई, जाओ मुक्ता निकल रही है मुक्ता की, किंतु थोड़े देर के बाद में निकलने के बाद में कांटे और उसमें ये सब निकलने, तो बड़ी उदास हो गई। फिर कृष्ण के पास में आई, कृष्ण से बहुत निहोरा किया, अब क्या हुआ?
मधुमंगल को लगाया, नहीं सुबल को, बोले कि अच्छा ये हमारा ये मुनिब होगा और यही हिसाब किताब करेगा मुक्ता का, कि जितना मुक्ता के बदले और क्या।
तो उन्होंने कहा जैसे अच्छा अच्छा मुक्ता हमारी नहीं फली, तो कुछ मुक्ता हमको दो, का जैसे ये लेन देन का व्यापार मैं नहीं करता, ये मधुमंगल इसका लोका जोखा और ये सब करेगा, जितना मुक्ता देगा उसका डेढ़ा लेगा। इस प्रकार से यही सब क्रीड़ाएं बचपन की क्रीड़ाएं हैं। कृष्ण ऐसे अद्भुत अद्भुत करते थे, राधा जी और भी अद्भुत अद्भुत कार्य करते।
गोपियों ने कृष्ण से कहा, अरे धूर्तराज
शिरोमणि रत्न सरोवर वहाँ बसाने में, और उसे एकदम डुबकी लगाओ उसमें से रत्न निकल जाए। बहुत से
कहाँ
जाओ ब्रजवासियों से और उस स्थान के जुड़ाने वाले महात्माओं से पूछो कि यहाँ पर कौन सी लीला हुई। वो
मघाई वजन यानी
रसिक वैष्णव के साथ में जाओ, जहाँ जहाँ कृष्ण की लीलाएं हुई है और वहाँ के स्थान के रहने वाले लोग महात्मा जानते हैं, उससे पूछो, देखो कितना आनंद है। यही तो ब्रज में भ्रमण करने का ये तरीका और यही फल है। जय जय श्री। आप लोगों ने सब प्रणामी दिया होगा, हमने कहा दान के लिए कम होगी, मुक्ताचर्य उसमें हिसाब किताब मधुमंगल करेगा, किस चीज का लेन देन का, हम मुक्ता देंगे उसके बदले में कुछ लेंगे, तो इसमें कुछ बहुत कुछ रहस्य छिपे हैं। और यदि वो कुंड में यदि मोती मिल गया है ना, मोती मिल गया, उसमें कोई बात विवाद की बात नहीं रह गई, इसमें वो भी ठीक है और हम लोगों का दान के लिए मुक्ता चरित्र की, किंतु इसमें रस भरा पड़ा है, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा समाधि में ये देखा था, दोनों का सामंजस्य तो कर लेना। गौ प्रमानंदे। अब इसके बाद हम लोग पहुंच सरोवर के निकट है। पहले ये रास्ता घाट कुछ नहीं था, ये सब पहुंच सरोवर के आस के रहने वाले ये सब उपवन था। कृष्ण के लीला के समय में तो और सुंदर उपवन था। कृष्ण यहाँ पर भूचारण करके पहुंच सरोवर में बछड़ों को गायों को पानी पिलाते, अपने पानी पीते, अत्यंत सुंदर पवित्र निर्मल मीठा पानी होने के कारण इसका नाम पड़ा पावन सरोवर। कमल के फूल इसमें खिले रहते थे, भौरे इस पर गुंजार करते थे, कोयल कुहू कुहू करती थी चारों तरफ। अभी भी मोर का शब्द अभी यहीं से सुन रहा था, के का मयूर कह रहा के और मयूरी कह रही है का के पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, मयूर कर श्रीमती राधिका के लिए का शब्द का प्रयोग, पौ जो कृष्ण रूपी मत वाले रसिक को अपने मान रूपी अंकुश से उसे उठाती बैठाती है, उसको एकदम बसीभूत कर देती है। कौन है ऐसा जगत में एकमात्र राधिका? मयूर कहता तुम नहीं जानती के माने कौन? राधिका जी के धैर्य धर्म सहिष्णुता
लज्जा
मान इसके पर्वत को भी चूर्ण कर देता है अपने एकमात्र प्रसन्न की छटा से। वो कौन है? सुखवारी दंड करते हैं परस्पर। सनातन गोस्वामी में देख करके यही भजन का सर्वोत्तम स्थान समझा। यही पावन सरोवर के किनारे बैठते थे, कृष्ण गोचारण करके अपने गैया बछड़ों को वो रास्ता है उधर से लेकर के आते। गोविंद लीला के अनुसार में या कृष्ण भावनामृत के अनुसार में राधा जी का एक राजभवन पास ही में था। विश्वभानु महाराज ने बगीची के रूप में जावट का यहाँ की जमींदारी उन्होंने कुछ ले ली और जब और श्रीमती राधिका जी के लिए अपनी लाडली बेटी के लिए वहां पर एक राजभवन बना दिया था। उस राजभवन से ही वो देखती थी कृष्ण गायों को चरा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, बंसी वादन कर रहे हैं। जब यहाँ से स्नान करते तो उधर से वो भी स्नान करने के लिए अपने सखियों के सहित में आ जाती थी। गोचारण करते जबकि लौटते यदि उनको मान लिया जाए वहां जावट में तो गोचारण करके यहाँ पर जबकि नंद ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं तो वहां से कैसे देखेंगे? किंतु यहाँ पर देखना संभव है इस लीला के कथा के अनुसार। कृष्ण गोचारण करके आ रहे हैं, गायों की तरफ में ख्याल नहीं है, ख्याल उनका किधर है? इधर उधर झांक रहे हैं, कुंजों में, उसके अटारियों में, खिड़कियों में झांक रहे हैं, आंखें खोज रही हैं। और यही से गोपियां नैनो पलाक के तनम गो गो गोप संघावृतम गोविंदम परम
दिव्यांगनम
बरहावतन संप्रिय श्री वत्सं मुदार कौस्तुभधरम पीतांबर गोपीना गोपियां यहीं से नैन से उनकी आरती उतारती और कृष्ण उनकी आरती को उन आंखों से ही ग्रहण करते थे। वो स्थान है पावन सरोवर। कभी कभी नंद जसोदा भी यहाँ पर आते थे स्नान करने के लिए, किंतु जसोदा जी जाती थी प्रतिदिन
जसोदा कुंड
और अपने दोनों बच्चों का और हजारों बच्चों का वहाँ पर किरणाएं का दर्शन करती थी। वहाँ यहाँ पर मैं समझता हूँ लाखों तीर्थ स्थान है, पद पद में यहाँ पर है। बाकी में दोहनी कुंड होगा। पंडा जी कहाँ है? पंडा जी हमारे नहीं आ रहे। अच्छा दिखलाया छाछ कुंड पास में है,
निकल गए।
हजारों कुंड यहाँ पर चारों तरफ में है। मनिहारी कुंड है,
पानीहारी
कुंड जहाँ से कि पानी भर करके लाया जाता था। कितने कुंड हैं और कितने दर्शनीय स्थान है, लीला स्थलियां हैं, इसकी गिनती नहीं की जा सकती। एक एक रेणु के में ये सब तीर्थ है। कृष्ण की यहाँ पर बहुत दिनों तक लीलाएं। जब गोपियां आई और कृष्ण को यहाँ से अक्रूर ले गए। इसके बाद से गोप गोपी लोग कहीं नहीं गए, यहीं पर रह गए। विप्रलम्ब के लीला वहां पर बतलाया था, ये सब मिलन का स्थान है। यशोदा जी का वात्सल्य स्नेह यहाँ पर अधिक है। यदि कुछ है तो थोड़ा सा उसमें मधुर रस उसमें मिला है, इसलिए राधा कृष्ण को हमारे गोस्वामियों ने इससे भी अधिक शुद्ध माधुर्य का वहाँ पर स्थान बताया है। इसमें दास्य भी सम्मिलित है, सख भी सम्मिलित है, वात्सल्य भी सम्मिलित है और इसके बाद में मधुर रस। मधुर रस कुछ कम है, वात्सल्य और सख्य ही यहाँ पर अधिक है। पौगंड की लीलाएं यहाँ पर, यशोदा जी ने अपना जितना स्नेह था सब वात्सल्य भाव कृष्ण के ऊपर में उड़ेल दिया था। यहाँ ब्रह्मा जी देख करके विस्मित है। नारद जी एक बार आए, उन्होंने देखा, अरे ये तो वेदों का प्रतिपाद्य विषय है, परम ब्रह्म। नंद बाबा के महल में उनके आंगन में लोटपोट कर रहा है, रो रहा है, मैया गोदी में चढ़ूंगा, दूध पीऊंगा। और वो इस तरह से करते ही अंगुली दिखला रहे, तू चोर हो गया है, ईंच हो गया है, धूर्त हो गया है, अब तुझे मैं गोदी में, अभी तुम्हारा श्रृंगार की अभी लौटने लग गया, अभी दूसरे के घर से मक्खन चोरी करके आने लग गया, मैं नहीं लूंगी। और उतने लौट रहे हैं, ये देखो तमाशा, ये पर ब्रह्मा यहाँ पर लौट रहे हैं उनकी गोदी में जाने के लिए ललक रहे हैं, और ये यशोदा मैया उनको इस प्रकार से कह रही है, ब्रह्मात्यादि मन के द्वारा भी, तपस्या के द्वारा अत्यंत पवन बना हुआ हृदय में भी उनका ध्यान लीलाओं का नहीं कर पाए। और देखो तो ये गोपी की क्या स्थिति, इसलिए उन्होंने कहा था, श्रुति मपरे स्मृतिरे भारत मन्ने भजन्त भव गीता अहमि आनन्दम वन्दे
यस्यालिन्दे
यस्यालिन्दे परम ब्रह्म। जिसके आंगन में ये परम ब्रह्म ढोल में लोट पोट रहा है, ऐसे नंद बाबा को के जो भवन है, नंद बाबा को बताना। और लोग वेदों का अध्ययन करके निर्विशेष ब्रह्मवादी भी बन सके तो बन जाए, संसार के भय से भीत होकर के हम ब्रह्मास्मि करते हैं वो करते रहे। महाभारत का भजन करे, असत माता पिता और ये वर्णाश्रम धर्म का आदर करते हैं तो करते रहे। भजन तो भाव गीता, संसार से भीत होकर के इन सब का ये शरण ग्रहण करें। वेदों में धर्म और धर्म इत्यादि की बातें की गई, हमको उससे कोई संबंध नहीं है। मैं तो नंद बाबा के आंगन में, जहाँ पर वो पर ब्रह्म लौटता पलौटता है, मैं नंद बाबा की ही वंदना करता हूँ। ऐसे नंद बाबा के या नंद गांव में आप लोग आए हैं, हम लोगों का परम जन्म जन्म कोटि कोटि का ये सौभाग्य समझिए। आज पावन स्वरों में आ रहे हैं, कहाँ मुक्ता कुंड में गए, अभी हम लोग तेर कदम में गए, कहाँ हम लोग गए उद्धव क्यारी में गए, नंद बैठक में गए, नंद बाग में गए, चरण पहाड़ी अक्रूर का स्थान है वहाँ गए, वृंदा देवी के स्थान गए, कितना गिनाऊं। अभी वहाँ पर चलेंगे, हम लोगों का पाठ प्रवचन होगा, उसमें संक्षेप में और सबका वर्णन करें। यहाँ पर सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है। सनातन गोस्वामी जी हमारे संप्रदाय के गुरु हैं, पहले हुए स्वरूप दामोदर, इसके बाद में राय रामानंद जी, ये इसके बाद में इन्हीं का नाम आता है। रूप गोस्वामी के गुरु हैं, क्यों गुरु हैं? उन्होंने बृहत भगवतामृत ग्रंथ लिखा, श्रीमद भागवत दशम स्कंद की टीका
बनी और वैष्णव प्रसंग की
पहली बार लिखा, जो समस्त वैष्णव समाज चमत्कृत हो गया। आज सवेरे उसके लिए कुछ थोड़ा सा मैंने बतलाया था। ऐसी सुंदर सुंदर रश्मि टीकाएं की हैं, जिसको देख करके श्रीधर जी और हनुमत जी, बादशाहन जी और सब लोग चमत्कृत हो जाते हैं। अभी भी टीकाओं को देखने से ऐसे बात करता है। ये बृहद भगवतामृत हमारे रूप गोस्वामी के लघु भगवतामृत का ये मूल है। भक्ति गोस्वामी सिंधु उज्ज्वल विमणि का भी ये पथ प्रदर्शक है। ऐसे सुंदर संत उन्होंने वर्णन किया, हमारे समाज को हमारे संप्रदाय को एकदम बांध दिया चारों तरफ से। हम लोग का विचार क्या है, हम किसका भजन करने जा रहे हैं, भजन की का उपासना मार्ग क्या है, उन्होंने बतलाया। और भी ग्रंथ हमारे समाज को ऊपरी रूप से हरिभक्त विलास के द्वारा एकदम बांध करके रख दिया, ये कैसे मंदिर होना है, कैसे उपासना, कैसे वैदिक भक्ति, ये सब का विषय ये यहीं पर भजन करते थे। उनकी बातें हम दो एक हम आप लोगों को हम लोगों ने सुनाया, अभी ये बच्चा ने सुनाया, अभी रात हो जाएगी, बस यही उनके चरणों में हम लोग पुष्पांजलि दे करके वहाँ पर थोड़ा सा उनके वर्णन करने की चेष्टा हम लोग करेंगे। आप प्रणाम करके अब सीधे वहाँ पर आ जाएगी। आज हम लोग पूज्य पाद नित्य लीला परिष्ठ ओम विष्णु पाद विषम भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी। प्रभुपाद जी का यह मठ पहले जो था हमारा बंगाल में उस समय में सात की पत्तियां बनती थी, वही ब्रह्मचारी पूरा बिछा करके सोते थे, दिन रात भजन करते थे, रहने के लिए घर नहीं थे, पलंग और चारपाई और ये घड़ी तड़ी ये जो देख रहे हैं ये सब एकदम कुछ नहीं, निश्चिंत रूप में भजन करते थे, किसी प्रकार जीवन धार। हम लोग के गुरु महाराज जी बड़े भारी जमींदार थे, ये महाराज जी थे वो के बड़े हृदय में बहुत बड़े अवसर थे, सब लोग छोड़ करके आए। ये बोले कि सर मैं 5 रुपया किया करूंगा महीने में, उस समय में आज से करीब 70-80 वर्ष पहले लोग बड़े प्रसन्न हो गए। उस समय में 1 रुपए में 20 किलो चावल आता था, 1 रुपए में तो हमने देखा था कि 1 रुपए में 1 मन गुड़ आता था, 1 रुपए में 8-10 दिन खूब अच्छी तरह से 10-20 आदमी का चल जाता था। उस समय वहाँ पर साग सब्जी किसी प्रकार से मिला करके सब्जी इत्यादि से मच जाता था। जब ये आए तो ये पैदल ऐसे नहीं चलते थे, कारों में जाते बड़े बड़े सेठों के यहाँ और ऐसे हरी कथा करते जो 10-10-20-30 हजार रुपया तेल घी गुड़ इत्यादि सब आने लगा और मठ एकदम चारों तरफ में मायापुर इत्यादि मठ बन गया और चारों तरफ भारत में प्रचार हुआ। इनकी योग्यता देकर के इनका नाम रखा अप्राकृत भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज। सारंग कहते हैं बजाने को, इसके साथ में सारंग बजता है ना, और सारंग का पर इतना के हारमोनियम इत्यादि नहीं, हारमोनियम कोई वाद्य संगीत का कोई ये नहीं ठीक नहीं है, उसमें पर ऐसे मुठना इत्यादि आरोह अवरोह उसमें नहीं आ सकता है जितना कि सारंगी में आता है, इसलिए भक्ति सारंग अतः उस कीर्तन के साथ में ये सारंग बजता है, उसकी सहायता करता है। ये प्रभुपादी के ये भक्ति रूपी ये सारंग थे, इनको उन्होंने इंग्लैंड में भेजा, 75 देशों में भेजा और वहां पर जाकर के लिए बड़े बड़े लोगों से मिले, वहां के राजा से मिले। उस समय में कौन थे, एलिजाबेथ थी या पंचम जॉर्ज इत्यादि युवराज थे, उनसे मिले, वहां का जो वायसराय था उसे वो जाकर के मिले और वहां पर उन्होंने पहली बार वन महाराज जी गए थे, वो वहां से चले आए थे, इसके बाद में प्रभुपाद जी को वहां पर प्रचार किया। भारत वर्ष में बहुत जगह इन्होंने मठ इत्यादि की, हमारे गुरु महाराज के परम बंधु थे, इस प्रकार से उन्होंने ये स्थान को दे करके इस स्थान को उन्होंने लिया था और तो ये कोठी बना करके भजन करने के लिए रखा था। पीछे से हमारे ये महाराज जी अकिंचन महाराज जी हैं, उन लोगों के अनुगत्य में बहुत सुंदर सुरम्य छोटा सा मंदिर कितना सुंदर बनाया और भजन करने के लिए ये कोठियां बनाई। मैंने भी यही सोचा था कि मैं अंत में यहीं पर आऊंगा, इन लोगों के आश्रय में किसी तिलू के वृक्ष के नीचे अकिंचन रूप में कुछ दिन भजन करूंगा। ये लोग परम सौभाग्यवान है ये निरपेक्ष होकर के ये भजन करते हैं, विशेष करके हमारे ये भक्ति भजन करते हैं, हमको भी बेहतर की इच्छा होती है अब सामान को वैसे भजन करने की, हमारे टुकड़ी भी नहीं लेकर के जीवन निर्वाह करते। हम इस स्थान को और महाराज जी को भी प्रणाम करके और हम लोग अब चलिए नहीं तो रात गौ प्रणाम।